નિયમ સાર કારણ કાર્ય નિયમ લેક્ચર નંબર 365 ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયર્યાણં નમો વર્ષાયાણં નમો લોયે સવસામૂહં નમ્યૂણજિનં વીરં અનંતવર્ણાનદં સણસહાવં મોક્ષામીયસારં કેવલી સુદ કેવલી ભયમ્. આચાર્ય શ્રી કુનકુન ભગવાન દ્વારા રચિત યહ નિયમસાર નામક ગ્રંથ હૈ ઉસ પર પદ્મ પ્રભો મલધારી દેવને તાત્પર્ય વૃત્તિ ટીકા લિખી હુઈ હૈ. ઇન પર ગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામી કે જો પ્રવચન હુએ હૈ વો કારણ કાર્ય નિયમ પુસ્તક રૂપ સે પ્રસિદ્ધ હુએ હૈ. અભી યે છઠવી પુસ્તક મે પૃષ્ઠ સંખ્યા 32 પર હમ આ ગયે 32 નીચે સે દૂસરા પેરેગ્રાફ હૈ વહાં સે હમ પઢેંગે. શુદ્ધ ચૈતન્ય ભગવાન પરમ જ્ઞાન અને આનંદનો સાગર ત્રિકાલી સ્વભાવ ભાવ કી બાત હૈ યહાં પર. તેને વશ થઈને જે ક્રિયા થાય તે તો શરીર રહિત થવાની ક્રિયા છે. ઉસકે વશ હોકર ક્યા ક્રિયા હો રહી ઉસી મે સ્થિરતા હૈ ઓર આનંદ કા અનુભવ ચલ રહા હૈ ઓર સભી ગુણો કે સ્વભાવ પર્યાય ચલતી હૈ તો કહેતે વો શરીર રહિત હોને કી ક્રિયા હૈ. ભગવાનના સ્મરણ આદિની જેટલી પરવશ થવાની ક્રિયા છે પરલક્ષ સે હોને વાલી સભી ક્રિયાઓ કો પરવશ કહા પરલક્ષી કહા એ પણ ભવનું કારણ છે. ક્યુંકી રાગ હૈ બંધ કા કારણ હૈ ઇસલિયે કહેતે ભવ કા કારણ હૈ. પંચ પરમેશ્વરીનું સ્મરણ એ રાગ ભવનું કારણ છે. સ્વ ને પર બે ચીજ છે. સ્વ ચૈતન્ય મૂર્તિનો આશ્રય તે શરીર રહિત થવાનો ઉપાય છે. એને મૂકીને ઉસકો છોડકર પરનો આશ્રય લેવો તે શરીરનું કારણ છે. ભવ થવાનું ભવ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ છે. પેજ નંબર 32 હા નીચે છે દૂસરા પેરેગ્રાફ નીચે છે ચોથી લાઈન. આંખો દી ધંધા કરવા આવું કરવું બધું નવરાશ કે દી. એ મધુભાઈ શું કરવું આ બધા હીરાને માણેકમાં ગરી ગયા અંદર. એમાં ગરી નથી જતો પણ એ મારા છે અને હું એનો વેપાર કરું છું એવો જે ભાવ તેમાં ગરી જાય છે. કેટલી સ્પષ્ટતા કરી છે. ક્યુકિ વો તો પરદ્રવ્ય હૈ વો ક્યા તુજે અંદર કુછ નહીં ઘુસને વાલા. યે મેરે હૈ મેં ઇસકો કર રહા હું યે મેને ઇતના કારોબાર ખડા કર દિયા યે જો હે ને ભાવ હૈ મિથ્યાત્વ ભાવ હૈ તેમાં ગરી જાય છે. ક્યુકિ કેવલ માત્ર પરદ્રવ્ય કો જાનના યા પરદ્રવ્ય હૈ વહાં પર ઉસસે કુછ ક્યુકિ વો તો પરદ્રવ્ય તો રહેગી ના. ये अनादि से ही सभी द्रव्य है विद्यमान है एक ही लोकाकाश में है तो उसकी सत्ता हमेशा रहेगी. हाँ परंतु वो मेरा है मैं उनका करने वाला हूँ ये सब मान्यता है. परद्रव्यों ने अवश जीव निरवय थाय छे. अवश जो उसके वश नहीं है स्वाधीन रहता है. निरवय यानी का निरअवय शरीर रहित हो जाता है यानी सिद्ध अवस्था प्रकट होती है. પરદ્રવ્યને વશ ન થાય એ જરૂર શરીર રહિત થાય. અર્થાત જે જીવ પરદ્રવ્યોને વશ થતો નથી તે અકાય થાય છે. એને કાયા બ્યાય મળતી નથી એ શરીર વિનાનો થઈ જાય છે. કોઈ સુનેગા કહેંગે તો ફિર જીવ કૈસે રહેગા બિના શરીર કા. ક્યુંકિ અનાદિ સે વો તો શરીર હે મેં હું માન્યતા હૈ. શરીર હૈ તો જીવ રહેતા હૈ નહીં તો ઉસકે બિના કહાં રહેગા લટકતે ફિરેગા કે એસા લગતા ઉસકો. સમયસાર જ્યારે પહેલું હાથમાં આવ્યું संवत 1978 नी साल मा त्यारे मैं तो बाहर तरत पाड्यो हतो।
ये संवत 1978 और ईस्वी सन कौन सा होगा?
इसमें
56 माइनस करना।
56 माइनस, अच्छा एक मिनट।
1978
में से 56 माइनस
1922 हो जाएगा, यानी सन 1922 में उनके हाथ में समय सर आया। क्या रे, मैं तो बाहर तरत पाड़ियो हतो के शरीर रहित थवानो आ उपाय छे। उनके ना अशरीरी होने का ये शास्त्र ऐसा उन्होंने बताया था। शेठ किदु, पण तेदी तो आमा स्थानकवासी मा हता एटले काई विरोध न करे। पछी तो विरोध कर्यो। ની સાલમાં સમયસાર હાથમાં આવ્યું। શેઠ હતા દામોદર શેઠ, 10 લાખ રૂપિયા તેદી 60 વર્ષ પહેલા હતા। અત્યારે તો એની કિંમત વધી ગઈ, પણ એ કાંઈ એને કહ્યું, આ અશરીરી પુસ્તક છે શેઠ કીધું, આ શરીર રહિત થવું હોય તો આ પુસ્તક છે। એ પુસ્તક છે એનો અર્થ કે એ પુસ્તક પોતે નહીં, એના તરફ લક્ષ્ય કરતા વિકલ્પ છોડીને નિર્વિકલ્પ થાય એને ઉસમે માર્ગ બતાયા, એ કહેનાય ઉનકો। એમાં એ કહ્યું છે, એમાં સમયસારમાં નિર્વિકલ્પ થવાનું કહ્યું છે। નિર્વિકલ્પ થવું એ જ શરીર રહિત થવાનો ઉપાય છે। આ બધા કામ માથે લીધા હોય એનું શું કરવું? આ દીકરો મરી ગયો નહીં સવારમાં? ઇન્દિરાનો દીકરો, સવારમાં 8 વાગે જવું પડશે। અચ્છા અચ્છા, હા હા હા, વો સંજય ગાંધી। ઇન્દિરાનો દીકરો નહીં, વો સંજય ગાંધી કી બાત હૈ, ક્યોંકિ પહેલે વો ઇન્દિરા ગાંધી કી બાત કુછ આઈ થી ના, આઈ થી, હા તભી આઈ થી ને, હું અપને બચ્ચે કો પંતપ્રધાન બનાના ચાહતી હૈ। સવારમાં 8 વાગે જવું પડશે, ત્યાં તો એ મરી ગયો, ઘણા કામ માથે લીધા હતા। ઇન્દિરાને પણ એને વડાપ્રધાન બનાવવાનો હતો, દેખો યહાં લિખાય। એકચ્યુઅલી ઇન્દિરા ઇન્દિરા લિખાય ને, વો ઈ રસ્વ ચાહીએ, ઠીક હૈ, બડી નહીં એ છોટી હોની ચાહીએ, બડી એ હૈ, એ બડા હૈ ઇસકો છોટા ચાહીએ, હા એસા સીધા, હા હા। દેખો મુમુક્ષુ, કોઈનું ધાર્યું કઈ થાય, કલ વાત આવી ને ધાર્યું થાય કે નહીં થાય, હા એને કોઈ કોઈ ઈચ્છા હોને સે કુછ હોતા હૈ ક્યા? ધાર્યું એને સોચા, અપને સોચને સે ક્યા હોતા હૈ? ઉત્તર, પણ એને એ કરવું હતું એમાં આ થયું। ક્યાં કહા, ઉનકો બનાના કુછ ઓર થા, ચાહતી કુછ ઓર થઈ, ઓર હુઆ યે વાત। કોની કઈ સ્થિતિ અવસ્થા થાય બાપુ, એ પરની વસ્તુ કઈ આત્માને આધીન નથી। શરીર કી અવસ્થા હૈ, જહાં જીતની રહેને કી યોગ્યતા હૈ ઉતને રહેગા વો। એ દેહની સ્થિતિની અવસ્થા જેટલી ત્યાં આત્માની રહેવાની હતી, કર્મને લઈને નહીં। देखो हम आयु कर्म पर आरोप आता है, परंतु हाँ बस इतनी ही, उसकी आत्मा को वहां रहने की उतनी ही योग्यता थी। आत्मानी योग्यता ने लईने शरीर में एटलू ज रहेवानु हतु। कभी कभी आयु तो अधिक बांध के आया है, फिर कदलीघा सिमरण के होता है, तो उसकी योग्यता ही उतनी थी। त्यारे आयुष्य कर्म हतु एटलू एम कहेवामां आवे। बाकी कर्म छे ए पर छे, આત્મા ભગવાન પરમ પર છે, કર્મને આત્મા અડતો નથી, એટલે આયુષ્ય પ્રમાણે જીવે છે એમ પણ નથી। દેખો વો તો નિમિત્તમે ચલા જાતા હૈ, પરંતુ રહેતા તો અપની યોગ્યતા સે, ઉપાદાન સે, યે નક્કી કરના હૈ। એની પોતાની પર્યાયની યોગ્યતા પ્રમાણે જીવે છે. જીવે છે કે એના એને ઉસ પર્યાય મેં જીને જીવે છે એસા. હું તો અનાદિ અનંત જીવતો ય રહેતો. વ્યવહારના રસિયાને આ બધું આકરું પડે. એકદમ વ્યવહાર વ્યવહાર, આ કરો આ કરો આ કરો, વ્યવહાર સાધન છે. હા હા, અર્થ કર્યો, નિયમ સાર. સાર એટલે મિથ્યા તો નો ભાવ. એ તો બારંબાર જ્ઞાનમતી કહેના હે વો કૈસા ગલત હૈ વો કહે રહે. એના વિરુદ્ધની વ્યવહાર ક્રિયા એવો અભાવ નહીં. એને વ્યવહાર કી તો પકડ રખી, વ્યવહાર કો તો છાઈએ. વો નિષેધ હૈ વો મિથ્યાત્વ કા, ઇતની બાત વહાં વો બતાના ચાહતી હતી. ઉત્તર, પણ એ નિશ્ચય છે તેનાથી વિરુદ્ધ છે એ સંસારનું કારણ છે. એને વ્યવહાર હૈ વો નિશ્ચય સે વિરુદ્ધ હૈ ઓર વો સંસાર કા કારણ હૈ. વ્યવહાર રત્નત્રય સંસારનું કારણ છે. હા હા, પણ પુણ્ય જરી અરે લોકો કો પુણ્ય કી મીઠાશ અંદર ઉસકી છોડના નહીં ચાહતા કિસી ના કિસી ભાઈ. અરે થોડા પુણ્ય તો ચાહી ના, લોગ ભી પૂછતે અરે પણ મનુષ્ય ભાવ મિલના હૈ, યે હોના હૈ, વો હૈના, પુણ્ય ચાહીએ કે નહીં ચાહીએ. તો કહેતે પણ પુણ્ય જરી એ મોટું દિલ્હીમાં 25 લાખ નું જંબુદ્વીપ બનાવ્યું, આવી ઉની કી બાત હૈ. 30 ફૂટ નું અહીં હસીનાપુરમાં માનસ સમ બનાવ્યું છે. માણસો ઘણા ભેગા થાય છે, શ્રદ્ધા 20 પંથીની અને હસ્તિનાપુરમાં અગ્રેસરો છે એની શ્રદ્ધા 13 પંથીની છે. પછી વાંધા ઉઠે અંદરથી. શ્વેતાંબરમાં પછી નામ બહુ આવ્યા, એ શ્વેતાંબરમાં હતા. અરે રે, આ હા હા, એ તો એમ કહે કે પરના કામ કરીએ, સારા દેશ સેવા આવી, એમાંથી જન્મ મરણ મટવાનો ઉપાય છે. વ્યવહાર રત્નત્રય નિશ્ચયનું કારણ છે. એ નિશ્ચયનું વિરુદ્ધ એને કહો એ ખોટી વાત છે. અને વ્યવહાર કો નિશ્ચય કો નિશ્ચય સે વિરુદ્ધ હૈ એ કહેને કે લિયે ઉનકા વિરોધ હૈ. વો કહેતે વ્યવહાર કો વિરુદ્ધ હૈ નહીં મત કહેના, મિથ્યાત્વ કો વિરુદ્ધ હૈ તો કહે તો કહો, એ ઉનકા કહેના હૈ. નિશ્ચયની વિરુદ્ધ તો મિથ્યાત્વ છે. હા, પણ અહીં નિશ્ચયની જે ક્રિયા ચાલે છે, દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર અને નિશ્ચય, એનાથી વિરુદ્ધ તે એની વ્યવહાર ક્રિયા છે. યહાં વ્યવહાર ક્રિયા મેં રાગ લ્યા, શરીર કી ક્રિયા તો જડ કી હૈ, અભી ઉસકો તો વ્યવહાર ક્રિયા મેં ભી નહીં લ્યા. યે જો જીવ કે પુણ્ય પરિણામ પાપ પરિણામ જો રાગ ભાવ હૈ, સમિતિ પાલન કરને કે ભાવ, મહાવ્રત કે પરિણામ જો હૈ, વો પરિણામો કો યહાં લેના, ઉસકો વ્યવહાર નામ દિયા હૈ. और बाहर जो क्रिया जो है, क्रिया को ही वो सब उसी की बात जो कहने वाले हैं, क्रियाओं का ही उपदेश है, वो तो शरीर की शरीर का कार्य है. व्यवहार क्रिया ये पराधीन शरीर नु कारण छे, यानी राग है वो शरीर का कारण है. शरीर मल से समझ में आई ना बात, शरीर नु कारण छे कौन, व्यवहार क्रिया ने राग, ये पराधीन शरीर नु कारण छे. શરીર મળશે ને ચાર ગતિમાં રક્ષે, કે રાગ હૈ વો ભવ કા કારણ હૈ, તો અન્ય અન્ય ભવ ધારણ કરતા રહેગા. પણ શું થાય, કોણ કોને કહે અને કોણ કોને માને, કોઈ કોઈનું માને એવું છે? જીસકો જો લગતા હૈ વો ચલતા રહેગા. ભગવાનનું પણ કંઈ માને એવું છે? એને પોતાને માને ત્યારે ભગવાનનું માન્યું. ભગવાનનું નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. ભગવાનને માનવામાં પણ ભગવાન કંઈ કારણ નથી. ક્યાં કહા, દેખો જો સ્વયં અપની ઉપાદાન સે વો માનેગા તો કહી વહી તભી વો માનેગા, તબ ભી ભગવાન પર આરોપ આયેગા ઇનકે કારણ માના, ઉનકે કારણ તો માના હી નહીં, ક્યુંકિ અનાદિ સે ભગવાન તો કહેતે આયે, ઇને અનંતો બાર તો સુના થા, તભી તો માના નહીં થા, જબ માના તો અપને સે માના, પણ આરોપ આયેગા સર્વજ્ઞ કી વાણી જો હૈ, જો કિસી નિમિત્ત સે મિલી ઉનકો તીર્થંકર દ્વારા, મુનિઓ કે દ્વારા, જીસ કિસી કે દ્વારા. એ તો પોતાને વિકલ્પ ઉઠ્યો ને માને ત્યારે ભગવાને નિમિત્ત કહેવાય. નિમિત્ત કહેંગે કબ, જબ કાર્ય હોગા તબ, કે બિના કાર્ય કે નિમિત્ત કહેને મેં આયેગા. ઓર કાર્ય હોતા અપને સે, નિમિત્ત સે તો હોતા નહીં, નિમિત્ત તો આરોપિત હૈ.
इसका अर्थ ये हो गया कि कोई मिथ्या देव या मिथ्या गुरु के पीछे लगता है तो उसकी स्वयं की वो भूल है।
बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ वो भी निमित्त है। हाँ।
सामने वाला उपदेश देता है इसलिए हम क्या करें, हम तो अच्छे थे लेकिन हमको ऐसा सिखाया गया, ये यानी सुशीला की जो मान्यता थी वही हुई ना।
नहीं नहीं, सबकी बात यही होती है ना, जब तक वो देखो सत्य सुनते हैं तब ऐसा लगता है हमको ये बात आज तक किसी ने क्यों नहीं बताई।
नहीं नहीं, पर आपको याद होगा तो सुशीला बहन
बहुत सारे मिले ना अकेले, वो
सुशीला बहन कहती थी कि हमको ऐसा सिखाया हम क्या करें, हमको कोई पहले क्यों नहीं मिला।
वो कांति भाई ने भी पूछा था, वो तो दिगंबर में थे और हर दशलक्षण में जाके क्षेत्र पर रहते थे तीर्थ क्षेत्र पर, तो ये बात आज तक हमको किसी ने क्यों नहीं बताई, 70 साल का मैं हो गया हर साल मैं जाता हूँ, ये बात उन्होंने भी पूछी थी। यानी हर जीव की यही मान्यता है, दूसरे ने मुझे क्यों नहीं बताया।
नहीं नहीं, मुझे क्या कहना है तो हाँ। मैंने उसको उस टाइम यानी 1997-98 में उसको बताया था
कि तुम्हारी पात्रता नहीं थी इसमें मिला नहीं कोई।
हाँ। तो मैंने उनको बताया
97
के जो कहने वाला था उसको मालूम नहीं होगा ये बात हो सकती है, लेकिन आपका उपादान जागृत नहीं हुआ सत्य बात समझने की इसलिए कोई मिला नहीं,
ऐसा ही है।
तो यहाँ वही कह रहे हैं,
और मिला तो भी उस कभी पहले सुना होगा कभी, तो उस अभी इस भाव की बात नहीं, पहले तो सुनाने वाला मिला पर कभी उसको विरोध करके रह गया, इसलिए इसको ऐसे क्योंकि ये इटसेल्फ बताता है कि निमित्ताधीन दृष्टि, मुझे क्यों नहीं कोई मिला, अभी मिला तो मुझे समझ गई, ये नहीं इसमें भी निमित्त के ऊपर ही जोर है। यही तो कहते कि पोतानो विकल्प उठ्यो ने माने त्यारे भगवान ने निमित्त कहवा। हाँ, फिर ये मार्ग ऐसा अलौकिक है, फिर उसके प्रति विनय अहोभाव तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। अब गुरुदेव के लिए इतने लोग जो कहते हैं उनके पीछे इतने लोग उनके कारण दिगंबर रामनायक को फॉलो करने लगे, तो उनको उनके प्रति जितना अहोभाव है गुरुदेव गुरुदेव ऐसा जो करते उसके पीछे यही ना कि जिसको ये मार्ग मिलता है उनको वो निमित्त के प्रति अहोभाव विनय जरूर होता है, और ऐसे विनय नहीं होगा तो वो तो विपरीतता है। वो ये विनय होना ये भी व्यवहार है, और ऐसा ही राग आता है उस भूमिका में। यानी उसने अभी उसका विनय किया तो ये नहीं कि अभी निमित्ताधीन हुआ, ये उसका अर्थ नहीं हो सकता। मान्यता नहीं है कि इनके कारण हुआ, फिर भी उनके प्रति ये सहज रूप से आता ही है। ए पन माने ए राग संसार छे, क्या कहा, जब मानने लगा तो अभी राग भाव है विद्यमान, वो भी संसार है। शुभ राग ए संसार छे, घोर संसार छे, नियम सार मा छे, ए शुभ राग ए घोर संसार छे।
यहाँ घोर का अर्थ क्या लेना,
घोर गाढ़ संसार, एमने की अशुभ करता शुभ ठीक छे, अशुभ से तो अच्छा है ऐसा नहीं कहते, वो भी घोर संसार है। यानी अभी अभी मान लिया है उसने, परंतु अभी तो सम्यक तो नहीं हुआ है, फिर भी उसके शुभ राग जो है वो तो घोर संसार है।
यानी यहाँ ये बता रहे हैं कि शुभ से अशुभ से तो शुभ ठीक है ना, ऐसे जिसकी मान्यता है। हाँ, वो भी घोर संसार ही है।
हाँ। क्योंकि अगर सम्यक दर्शन हो जाता है तो वो अशुभ से शुभ ठीक है ना वगैरह, उसके वो तो वो भी राग है, बंध का कारण है, वो भी हेय है।
यानी श्रद्धा में फल की इच्छा है। हाँ। अच्छा फल मिले उसको बंध भी अच्छा लगता है।
देखो प्रवृत्ति में से छूटेगा नहीं वो शुभ राग, फिर भी मान्यता में उसको हेय मान रहा है। ये प्रवृत्ति और मान्यता का बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि बाहर से दिखने वाले कह रहे ये तो निषेध करता है और फिर भी यही शुभ भाव में अटका है, ऐसा लगता है उसको। वो अटका है कि नहीं अटका, वो राग से कितना उसको भिन्नता वर्तती है, वो बाहर दिखने से तो पता नहीं चलने वाला। ऐसा भी होगा ना, अज्ञानी तो बहुत भक्ति भाव से भक्ति करता हुआ दिखेगा और ये नहीं भी दिखेगा, तो हम उसकी क्रिया से उसका कोई माप नहीं निकाल सकते अभिप्राय का। ये दूसरा पैराग्राफ, भगवान आनंदना नाथ थी विरुद्ध भाव, यानी राग भाव, त्रण लो, क्योंकि आनंद स्वरूप है और ये राग है वो दुख रूप है, वो विरुद्ध भाव है। त्रण लोकनो नाथ, चैतन्य निरंजन नाथ, एनाथी अमृतना सागर थी, एनाथी यानी अमृतना सागर थी विरुद्ध भाव, ए अमृतनो सागर भरेलो प्रभु छे, राग एनाथी विरुद्ध छे, ए तो झेर छे। यहाँ इसको अमृत कहा, वहां उसको झेर कहा। आत्मा है वो आनंद, आनंद का नाथ है और वो तो दुखमय भाव है। चाहे तो शुभ राग पण अंदर थी झेर छे, जीवना जीवन ए नथी, जीवना जीवन ए नहीं, जीवना जीवन तो शुद्ध उपयोग, ए जीवनु जीवन छे। वो ज्ञान स्वरूप है तो वो ज्ञान स्वरूप ही रहना, वही उसका जीवन है। ए अही कहे छे, जे जीव परद्रव्यो ने वश तो नथी, एने अवश है ना, ते अकाय थाय छे। आ प्रमाणे निरुक्ति एटले व्युत्पत्ति छे, शब्द इस तरह से तैयार हुआ है। निर्वय कीधु ने, पेज नंबर 34, निर्वय एनी व्याख्या करी, निरवय एनी व्युत्पत्ति एटले अवयव विना, निर अवयव, अवयव रहित, अवयव एटले शरीर विना। अहीं तो बे वात छे, का शरीर संसार अने का मुक्ति, कोई वचली दशा नथी। जेटलो स्ववश थाय तेटली मुक्ति, केम के पोते मुक्त स्वरूप छे ते मुक्तिनु कारण थाय, अने राग बंधनु कारण छे ते संसारनु कारण छे। इसलिए जितनी स्ववश जितना है उतना वो मुक्त स्वरूप ही है, ये कह रहे। और जितना राग है उतना भी संसार है। पुण्य पाप मां आवे छे, ए राग पोते बंध स्वरूप छे, ए बंधनु कारण छे, अने आत्मा तो मुक्त स्वरूप छे। अंदर मां राग थी मुक्त स्वरूप छे, क्या कहा, मुक्त स्वरूप है, राग से भी मुक्त ही है, उससे रहित ही है। मुक्त स्वरूप ते मुक्ति नु कारण छे, जो स्वयं मुक्त स्वरूप है वह मुक्ति का कारण है। मुक्त स्वरूप तो स्वभाव भाव है, सामर्थ्य है, और मुक्ति का कारण है पर्याय में वो मुक्त दशा प्रकट होती है। अभी बात पन सांभळी पन न होय, भार मां घुची गया लाकड़ा, यानी सब मिथ्या मान्यता है, अंदर भूसा भरा है कहते हैं। मुमुक्षु बहु गोटाला करया छे, घुची गए ने अंदर,
घुची गया माने छोटी मान, घुची ग है तो घुची गया माने घुचवाड़ो से,
हां,
और ये घुची गया माने
अंदर घुस गए। घोटाला छे पहले थी, अनादि थी, यानी अनादि थी मिथ्या मान्यता का घोटाला चल रहा है, भ्रमणा चल रही है। अनादिना जीवो एमाथी फरी जऊं ए वात छे, हा अरे भगवान, यानी ये मिथ्या मान्यता में से निकलना बहुत बड़ी बात है कह रहे। एक कोर संसार ने एक कोर मुक्ति, बे छे। हवे जेटलू चैतन्य भगवान नो अवलंबन एटली शरीर रहित थवानी दशा, यानी वो जो शुरुआत होगी तो उतनी मुक्ति, ऐसा भी कहेंगे कि वो पार्शल पार्शल है, अभी वो शुरू हो गया ना तो उतनी मुक्ति कहेंगे यहाँ पर। अने जेटलू परनु आलंबन ए शरीर सहित थवानी दशा, रहित अने सहित एक एक गाथाए केटली बात करी छे, इसलिए पूर्णपणे अंतरंग में जो लीन हो जाएगा तो उसको तो मुक्त दशा हो जाएगी। जब तक अभी शुभ भाव भी है, अभी साधक दशा है तो शुभ भाव भी है, तो तब तक उसका संसार अभी चल रहा है। अब यहाँ 142वीं गाथा की टीका पूर्ण करता टीकाकार मुनिराज श्लोक कहे छे। नंबर योगी कश्चित स्वहित निरतः शुद्ध जीवासी कायात अन्य शाम यो न वशितिया संस्थिति सा निरुक्ति तस्मादस्य प्रहत दुरित ध्वांत पुंजस्य नित्यं स्फुरजत ज्योति स्फुटित सहजा वस्या मूर्तता स्यात्। बरोबर है? पढ़ेंगे। योगी कश्चे स्वहित निरत शुद्ध जीवास्ति कायात् अन्येषां यो न वश इति या संस्थिति सा निरुक्ति तस्मादस्य प्रहत दुरित ध्वांत पुञ्जस्य नित्यं स्फुरजत् ज्योति स्फुटित सहजा वस्तया मूर्तता स्यात्। देखो, कोई योगी, कश्चित योगी लिखा ना, कोई योगी स्वहितमा लीन रहे तो थको। स्वहित निरत, निरत है ना, लीन है। किसमें है हित? अपना पैसा कमाने में नहीं, अपने त्रिकाली स्वभाव भाव में लीन है। लीन रहे तो थको, थको है ना, लीन रहता हुआ, इसको कहते ना चालू वर्तमान का। हाँ, अच्छा, कंटिन्यूस वाला। तो स्वहितमा लीन रहे तो थको शुद्ध जीवास्ती काय सिवाय ना अन्य पदार्थों ने वश थतो नथी। शुद्ध जीवास्ती काय ने अपने स्वयं स्वयं का द्रव्य शुद्ध जीवास्ती काय लिया। आम जे सुस्थित रहे वो सुस्थित ते निरुक्ति अर्थात अवशपणानो व्युत्पत्ति अर्थ छे। एम करवाती पोतामा लीन रही परने वश नहीं थवाती दुरित रूपी तिमिर पुंज। दुरित ने पाप कहते, यानी पाप कहने से, दुरित कहने से, ये पुण्य और पाप दोनों को मिलकर दुरित शब्द आता है। अघक शब्द भी बहुत बार आया है। नीचे फुटनोट है, देखो, दुरित ने दुष्कृत दुष्कर्म पाप तेमज पुण्य बनने खरेखर दुरित छे। मराठी में कहते दुरितान से तिमिर जाओ, यानी पाप को ही वो दुरित और अंधकार कहते। पर पाप नष्ट हो जाओ और पुण्य मिल जाओ, इतना यहाँ तक तो सीमा है इनके। धर्म का उपदेश भी उतना ही करते हैं। देखो, दुरित रूपी तिमिर पुंजनों जेने नाश करियो छे, यानी पाप और पुण्य दोनों का नाश हो गया। एवं ते योगी ने सदा प्रकाशमान ज्योति वड़े सहज अवस्था प्रकटवाती। सदा प्रकाशमान ज्योति वड़े ने क्या है? केवल ज्ञान उत्पन्न हो गए ना वो। सहज अवस्था प्रकटवाती अमूर्तपणो थाय छे। अमूर्तपणो ने पहले कर्मों से सहित अवस्था थी, कर्म रहित हो जाता है, उसको अमूर्त कहा। क्योंकि संसारी जीवों को भी मूर्त कहीं कहीं तो रूपी भी कहने में आता है। ये इवन जीवकांड में भी बताया, सम्यक तो मार्गणा में आती है बात। जब तक, क्योंकि अनादि से कर्म सहित बंधा ही है, कभी उससे रहित हुआ ही नहीं था, उस अपेक्षा से उसको कथनचित किसी अपेक्षा से रूपी भी कहते हैं। तो वह अमूर्ति कब होगा? जब सिद्ध अवस्था होगी तब। ये अपेक्षा से यहाँ अमूर्तिक होता है, ऐसा कहेंगे। अब श्लोकार्थ नीचे देखो। कोई योगी स्वहितमा लीन रहतो तको। योगी एटले कोई बावो, बावो योगी एम नहीं। योगी एटले आ आत्मानु जोड़ान करे ते योगी। योग का अर्थ होता है जोड़ान, और जिसने वो कर लिया वो योगी। कोई पण धर्मी स्वहितमा लीन रहतो थको, पोताना स्वहितमा लीन रहतो थको, परहित करवामा लीनता छोड़ी दईने परनु हित करी शकतो नथी। क्या कहा? परहित में जो रचा पचा था, मैं कर सकता हूँ, ये मान्यता छोड़ी दी। अब ये तो उनका उपदेश है, तो सहज रूप से परहित हो रहा है, हमारा हित हो रहा है उनके उपदेश से, उसमें वो लीन नहीं थे। उस काल में भी, राग के काल में भी उनके तो भावना तो अपने स्वरूप में स्थिरता की ही थी, यानी वो दूसरे को उपदेश देने में लीन थे ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि लीनता उनके तो उससे भी भिन्नता, उस काल में भी उनकी भिन्नता अनुभव जुदा चल रहा था, ये कहते हैं।
लोगों की ये मान्यता है कि हम अपना नहीं तो नहीं, कम से कम पर का तो हित करें, यानी पर को तो सुधारे, तो उसके लिए स्वामी जी उत्तर देते हैं, देखो क्या लिखा है, परनु हित करी शक्तो नथी, यानी मैं पर का हित यानी पर का भला कर नहीं सकता, तो उसके लिए तो कारण बहुत है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता है, दो द्रव्य में अत्यंत भिन्नता है, सब चतुष्ट अलग अलग है, यानी इतनी सब बातें हैं वो लोग ख्याल में नहीं लेते, अरे सुन विजन गाड़ो अपनी, अरे बाड़ो नहीं आप, पर तो बनू पर नहीं कर सकते, तू किसी को जिला नहीं सकता, मार नहीं सकता, और इससे क्या बात चाहिए और, लेकिन ये बात पल्ले नहीं पड़ते तो मानस ध्रुजी जाए, गर्म थी जाए,
यानी अंदर अभिप्राय में ये बात पड़ी रहती है, ऐसा होता है ना, कोई ऐसे भी हमको मिले कहने वाले, अरे अपने को तो अभी समय दर्शन नहीं हुआ, जब तक नहीं होता तो दूसरों को समझाएंगे तो नहीं, समझाने में क्या हर्जा है, हम उनको समझा तो देंगे, उनका तो कल्याण करेंगे, अरे पर को समझा नहीं सकता, ये बात पहले में पहले नक्की करना है, और हम दूसरे का निमित्त बनना चाहते हैं, और जब तक वो नहीं होता तब तक ये करूँ क्या नहीं करूँ, यानी वही ना, जब तक नहीं होता तो शुभ करना चाहिए ना, ये बात उसे अभिप्राय के पीछे पड़े, ऐसे भाव आएंगे, क्योंकि जब सुनते हैं तो भी ये सही है बात ख्याल में आती है, तो सही वाले का जिसका अभ्यास है वो उपदेश भी देगा, उसके ना नहीं है, पर अगर मान्यता में है कि मैं इस तब तक तो लोगों को तो समझा दूं, ये मान्यता का निषेध है। हाँ।
सपना आप यहाँ आई तो कुछ नई बात सुनने को मिल रही ना, पहले ऐसी मान्यता थी, अभी कुछ अलग हो रही कि वैसी के वैसी रही। हाँ? अलग हुई, जो सत्य बात है वो समझने में टाइम नहीं लगता है, अब सत्य बात समझे तो झूठ बात छूट जाती है, अपने अब छोड़ना नहीं पड़ सकता।
तो देखो पर ने मदद करी शक्तो नथी, है ना, पर ने मदद करी शक्तो नथी, तो दूसरे को समझा तो दे सकता है कि नहीं सकता। पर ने एक पाई पण आपी शक्तो नथी, पर ने रोटली नु बटकू पण दई शक्तो नथी, आहा हा, पर ची छे दे कोण, बटकू यानी उसके टुकड़ा, उसका रोटी का टुकड़ा, क्योंकि वो परमाणु है, परमाणु की अवस्था हम करने वाले कौन है, उसका जो जो एक स्थल से दूसरे यानी जिसको क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना उसके अधीन है, ये कहते हैं। पर ची छे दे कोण ने ले कोण, देखो जब तक इसका अभ्यास नहीं है निमित्त उपादान का तो ये बात ख्याल में नहीं है, देखो हमने दिया कि नहीं, उसने लिया कि नहीं, यानी ये ऊपरी ऊपरी बातें सोचता है, वो गहराई तक जाके उसका जो रियलिटी क्या है, यानी रियलिटी क्या है एक्चुअली, कि ये वस्तुओं का परिणमन अपने से होता है, ये जब तक ख्याल में नहीं आता तो हमने दिए बिना ये उठे गए, देखो ये यहाँ पड़ी थी हमने उठा के यहाँ रखे, हम नहीं रखते तो कैसे जाती वहां, पर ये यहां से वहां जाना उसके अंदर उसकी क्रियावती शक्ति से हुआ है, और वो जाने के काल में धर्मद्रव्य निमित्त है, कायम निमित्त तो धर्मद्रव्य है, और यहां तो हमने यहां इसे यहां उठाया तो कहेंगे हमने उठाया, ये कथन होता है, परंतु यहां जीव को ये उठाने का भाव आया, वो हाथ की अभी उठाने का भाव तो आ रहा है और यहां पैरालिसिस हुआ तो क्यों नहीं उठा रहे, ऐसा होता है कि नहीं होता है, यानी ये सभी बातें ऐसी है कि वो ऐसा लगता है कि बाहर से ही सब कार्य हो रहे हैं, निमित्त से ही कार्य हो रहे हैं, ये लगता है, लगेगा क्योंकि अनादि से, इसीलिए तो भ्रमणा चल रही है, परंतु उस पर गौर से विचार करेंगे तो ये बातें, क्योंकि ये सर्वज्ञ के द्वारा कथन की गई है, मुनियों ने उसको बराबर उसको परीक्षा करके स्वीकारा है, हमको भी बताया है, और हमको भी परीक्षा करके उसको स्वीकार, ऐसा नहीं कि ये कहते इसलिए सत्य होगा, ऐसी बात नहीं, वो सत्य क्यों है उसकी परीक्षा होनी चाहिए।
देखो यहाँ पर जो बात लिखी है कि लास्ट लाइन में लिखा है ना, आहा हा, पर चीज छे ए दे कौन अने ले कौन, यानी क्या कहना चाहते हैं, ये हमारी ताराबेन बंबई में पहले पहले आई तो हमसे मिली कि यहाँ क्या क्या अच्छा देखने का है, हमने कहा चलो आपको गेटवे ऑफ इंडिया दिखा देते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया देखा, ओ हो कितना अच्छा है, आपको पसंद है? हाँ बिल्कुल, तो दे दो, आपको दे दिया। बोले वो मन में सोचने लगी, क्या पागल आदमी है, क्या उसके बाप का है क्या, गेटवे ऑफ इंडिया मेरे को दे रहा है। यहाँ आगे क्या बोले, दे कौन, यानी परजी को कौन दे सकता है, आगे लिखा है कौन ले सकता है, बोलो। यानी स्वामी जी एक एक वाक्य में इतनी गहराई भर देते हैं, यानी पर चीज को ना कोई दे सकता है ना ले सकता है, पर चीज को पैसा नहीं दे सकता है, पर चीज को रोटी भी नहीं खिला सकता है। कल से रोटी बनाना बंद कर दो, नहीं बनाएंगे बोलते।
ये तो बनाया कब था आपने, बंद करने का सवाल कहाँ है। देखो 36 नहीं नहीं उनके लिए बताया मैंने। देखो 36 पेज पर तरीके जानवा लायक छे। देखो ऐसा लगता है ना कि हम करे कि नहीं करे, करे कि नहीं, ये करे ये का अर्थ क्या है, हम कर सकते हैं तो हम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अरे तो कर ही नहीं सकता ये नक्की करना है, तो रोटी तो बनाए कि नहीं बनाए, अरे वो बनती हुई रोटी वो आटे का कार्य इतना जानना है। हम तो उस समय भी जानने का ही कार्य कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। रोटी का वैसा परिणाम चल रहा है, हाथ का वैसा परिणाम चल रहा है, यहाँ राग वैसा अपना चल रहा है, तो राग करते हुए हाथ चलते हुए वो ख्याल आता है और ज्ञान होते हुए ख्याल में नहीं आ रहा है। इसमें हमारा कार्य तो ज्ञान करने के चल रहे, वो हो रहा है उस समय, पर उसमें हमारा जिसको कहें उसमें आत्मीयता नहीं, वो आत्मभाव नहीं लगता है, वो राग वाला कार्य वो मेरा लगता है। अरे राग का छोड़ो, शरीर का कार्य वही मेरा लगता है, पर इसमें से मेरा कौन सा कार्य है और ये परद्रव्य का कौन सा, इसको नक्की करना है और कुछ नहीं करना है। धर्म करने ने कुछ करने की बात है ही नहीं, ये सब निश्चित करेंगे, ये इसी को कहेंगे तत्व का निर्णय। होते हुए कार्य में ये होते हुए ख्याल में आ जाएगा और ये परद्रव्य के है। शरीर का कार्य होते हुए, जैसे बोलने के काल में बोलने का कार्य होते हुए ख्याल में आ जाएगा, तो ये बेसिक पता है, तो ये सभी बातें भाषित होती है कि ये तो यहाँ तो ज्ञान का कार्य चल रहा है और वहां बोलने का परिणाम है, राग भाव भी चल रहा है, ये सभी बातें एट ए टाइम हो रही है, तो उसमें से मेरा कौन सा कार्य इतना नक्की करना है और कुछ नहीं करना है। हाँ। स्कूल में बच्चे को लेने जाते थे आप ताराबेन, इतने सारे बच्चे, पर मेरा बच्चा कौन है तो ख्याल है कि नहीं, भले अभी उसको लाया नहीं वहां से, इतने सारे कार्य होते हैं सभी द्रव्यों के, उसमें से मेरा कार्य कौन सा तो जानने का, मेरा इतना तो नक्की करना है और कुछ नहीं करना है, ना किसी को अलग करना है ना किसी कार्य को रोकना है, कुछ हम कर ही नहीं सकते, जिसका कार्य होता है वो उसका निर्णय करना है, बस इतना ही।
कोई किसी को पैसा दे नहीं सकता तो दान देवे के नहीं देवे,
अरे कौन देवे, फिर भी वही बात है ना, वो तो उसके कार्य आ रहा है, जब शुभराग उसके अपने काल में आ रहा है, पर ये शुभराग से एकत्व है तो मैं दान दे सकता हूँ, मैंने इतना दान दिया, देखो ये ऐसा ये बाहर से कथन में ऐसा है ना, हमने दे दिया, वो घोषित करेंगे इन्होंने इतना दान दिया उनके कारण मंदिर बना, ये सब चलेगी बातें, पर ये सब कथन भी व्यवहार है, उसी अपने में उसमें कर्तृत्व अपने और मत लेना है कहते हैं। तो दुनिया में तो ये दो नए है ना, उससे ही कार्य चलता है, उसमें व्यवहार नए से ही मुख्यतः बातें होती है बाहर में, तो पर ये निश्चय नए समझने की जिम्मेदारी हमारी है। देखो यहाँ लिखा ना पर तरीके जानवा लायक छे पण व्यवहार, एक रोटली नु बटकू पण बीजा ने आपी शके, आहा बहु तृषा लागी होय अने तृषा थी तरफड़तो होय एने पानी पाऊं ए पानी आपी शके एम त्रण काळमां नथी, आ वात केम बेसे, आखो दी काम व्यवहार ना थाय अने कहीं कहे ए करी शके ने, क्या कहते है, दिन भर तो कर रहा है और कहते करी सके नहीं, ऐसा लगता है ना, कर तो रहा है और यहाँ कहते कर सकता नहीं, तो कहते करवानू माने तो संसार उभो छे। देखो प्रवृत्ति हो रही है परंतु वो तो प्रवृत्ति में भी वो राग जो है उससे भी मैं जुदा हूँ, ये बात उस समय भी चल रही है, मान्यता जिसको हम अभिप्राय कहते हैं वो अभिप्राय का वहां फल है। એક કરવાનું માને તો સંસાર ઊભો છે, શરીર છે, નરકને નિગોદમાં જશે, ભવમાં જતા ક્યાં ઠેકાણે ભવ જશે, ક્યાં ઠેકાણું છે, એ ક્યાં ઠેકાણું છે, ક્યાં કહે તે ભવમાં જતા કયા ઠેકાણે ભવ જશે એ ક્યાં ઠેકાણું છે, એને ઉસકા ક્યાં હિસાબ હૈ, એને કહાં જાકે મરે જન્મ લેગા એ કિસકો પતા હૈ, ઉસકા ક્યાં ઠેકાણા હૈ. ઇસ તરહ સે મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક મેં એક જગ્યા એસા એસી બાત આઈ, એ પરિણામો સે વો એકેન્દ્રિય મેં જન્મ લેગા તો વહાં કિતના રખડેગા યાની કિતના કાલ ઉસકા કોઈ પ્રમાણ નહીં હૈ, પ્રમાણ નહીં કોઈ હિસાબ નહીં હૈ. તો જયપુર મેં કોઈ શિબિર થા, બહુ સારા વિદ્વાન ચર્ચા કરને કોઈ ઇકઠ્ઠે હુએ થે વો યશવાલજી કે ઉનકે રૂમ મેં, તો ફિર હમ સેકન્ડ ફ્લોર પર વહાં રહેતે થે, હમકો બુલાવા આ ગયા, આપ આઈએ યહાં કુછ ચર્ચા ચલ રહી હૈ. તો દેખો ટોડરમલજી કો ભી પ્રમાણ માલુમ નહીં કહેતે. હા તો હમને બોલો ક્યા હૈ ક્યા હૈ, તો ઉન્હોને વો સબ નિકાલ કે સબ દે દિયા. તો ઉસકો પઢા હમને વો યાની એકેન્દ્રિય મેં કિતના કાલ જાયેગા ઇસકા કોઈ પ્રમાણ નહીં, યાની પ્રમાણ નહીં હૈ, નહીં ઇસકા કોઈ હિસાબ નહીં હૈ, ક્યોંકિ વહાં અસંખ્યાત પુદગલ પરાવર્તન કાલ તક રખડ સકતા હૈ, ઇસકા કોઈ પ્રમાણ નહીં, કોઈ ઇતના અધિક લંબા કાલ હૈ, યાની વો પ્રમાણ યાની પ્રૂફ કી બાત નહીં હૈ.
યાની હમ એસા કહેંગે કે તારા બેન કે પાસ ઇતના સોના હૈ ઉસકા કોઈ પ્રમાણ નહીં, તો ઉસકા અર્થ ક્યા હો ગયા, બહોત હૈ.
હા દેખ એક હી શબ્દ કે અનેક અર્થ હોતે, વો જો વાક્ય રચના હોતી ના ઉસમે કભી કભી એસે કન્ફ્યુઝન હો જાતા હૈ, વાક્ય તો વહી હૈ ઉસમે સે અર્થ દૂસરા ભી નિકલ સકતા હૈ. વૈસે એક બાર વો ફોન આયા થા ને કિસી વિદ્વાન કા આયા થા કે ઉસમે આતા હૈ જબ કર્મ બનતા હૈ ના તો આબાધા કાલ કે પશ્ચાત નિષેક રચના હોતી, યાની જિસ સમય બંધ હુઆ, અભી માન લે 70 કોડાકોડી સાગર કા મિથ્યાત્વ કા બંધ હુઆ તો નિષેક રચના 7000 વર્ષ કે જીતને સમય એક પ્લસ વન સમય પર પહેલા નિષેક, ફિર દૂસરા તીસરા અગર જીતને ઉસકી જો સ્થિતિ બાંધી ઉતને નિષેક હો ગે, 70 કોડાકોડી હમને દેખા થા. તો ઉનકા એસા પૂછના થા બંધ કે બાદ 7000 વર્ષ બીત ગયે ઓર બાદ મેં ઉસને નિષેક રચના કી કી નહીં, મેને એસા નહીં હૈ, બંધ કે હી સમય મેં 7000 વર્ષ છોડ કર ઉપર નિષેક રચના હુઈ હૈ, એને એક હી વાક્ય મેં ઉસકે ઉસકે પશ્ચાત નિષેક રચના હોતી, ઉતના કાલ જાને કે બાદ નિષેક રચના હુઈ, એસા ઉનકા કહેના થા, એસા તો હૈ નહીં હૈ. દેખો અભી હમ યહાં દેખતે ये सेकंड पैराग्राफ अभी क्या ठेकाणु छे पर हमने आ 84 ना अवतार भव भ्रमण पड़या छे बापा, यानी मान्यता अगर गलत चलेगी भ्रमणा चलेगी तो अभी तो मनुष्य है, पर सारे जो 14 जीव समास कहो या 84 लाख योनिया कहो सब रस्ते खुले हैं, मिथ्यात्व में चारों गतियों के दरवाजे खुले, कहीं पर भी घूम सकता है और घूम घूम कर फिर निगोद में पहुंच जाएगा हेडक्वार्टर લંબે કાળ તક વહા નિખાલા ગયા. આવ્યો હતો ને ભવનો ભય, આમાં આવ્યું તો સંસારની ઘોર ભીતિથી સર્વજીવો, પહેલી વાત આવી હતી દેખો દો તીન એક પાના પહેલા જ ટીકામાં 233 સંસારની ઘોર ભીતિથી સર્વજીવો નિત્ય તે ઉત્તમ ભક્તિ કરો, એને ઘોર ભીતિ સે ડર કર, એને સંસાર સે ડર કર, यानी संसार का जिसे घोर भय लग रहा है उनके तो नित्य इनकी भक्ति करना है. नित्य भक्ति यानी कौन सी, योग भक्ति, अंतरंग में स्थिरता. संसार थी डरो एम कहे छे, अरे भव थशे एमां शुं थशे डरो ए परवश छे, कये वक्ते त्यां शुं थऊं, भवरहित थवानी दशाने प्रकट करो प्रभु, कारण के तू भवरहित ज छो. क्या कहा, ભવરહિત હોને કી દશા પ્રકટ કરો, ક્યો, ક્યોંકિ મેં સ્વયં ભવરહિત હું, યહાં લિખા ને કારણ કે તું ભવરહિત છો, ભવરહિત છે એ ભવરહિત થઈ શકે છે. અગર અંદર મેં કપેસિટી નહીં હોતી તો કૈસે હોતા, રાગ અને પુણ્ય ભવ સહિત છે એ તો સંસાર છે, એટલે એમાંથી તો સંસાર મળશે, એને પુણ્ય કરતે કરતે મોક્ષ હો જાયગા કે નહીં હો જાયગા, તો કહેતે તીન કાલ મેં નહીં હોગા, क्योंकि वो संसार का कारण है, भव का भाव है ना, पुण्य भावनो दयादान व्रत भक्ति पूजानो भाव संसार छे। जब तक वो भाव है वो शुभराग है, उससे बंध है और वो संसार है, नहीं संसार का कारण है, उसको संसार कह दिया, वो भावों को ही संसार कह दिया। शांति भाई आओ सामिल न होए, दीदे राखे त्या भाषण, उस दिन भी आई थी बात, ये भाषण देते रहे थे, दिल्ली की बात कुछ आई थी, आम छे ने तेम छे ने फलानु छे ढीकनु छे, आहा हा हाँ, कोई योगी आने योगी की दो, अच्छा अच्छा शांति भाई को यहाँ संबोधन करे, पर वो किसी दूसरे को दिल्ली वालों को वो रेफरेंस भाषण देते रहते, ऐसा कुछ कहा था पहले उन्होंने, कोई योगी आने योगी की दो, जे आत्मा मां जोड़ाए ते योगी, बाकी बधा भोगी। और अपने को योगी मानते हैं, अभी धर्म ही क्या है पता नहीं है तो काहे के योगी। ज्ञान ने आनंद स्वरूप प्रभु तेमा जे जोड़ा है ते योगी, स्वहितमा लीन रहतो थको, स्वहितमा स्वहितमा लीन रहतो थको, परहितनु करवू करवू काई छे नहीं, पांजरा पोळू करवीने आ बधु करे छे, भूख्याने माटे अनाज भेगू करीने रोटला आपवा, मानसने नौकरीए राखवा के जेथी आपे, अहीं तमारे पण आपता हता कूतराने रोटला, एक फेरी सांभळ्यो तो खरू, आपणने बहु खबर नहीं, कोक रोटला आपता हता, पोपटभाई तरफथी हतुं, पोपटभाई तरफ अहीं कूतराने रोटला आपता, पण रोटलो पर कूतरो पर दे कोने ले कोण, आवुं छे बापा। आहा हा एक और सारो राग, देखो ये प्राणियों को या ऐसे देने के भाव, ये तो राग भाव है, शुभ भाव है, वो धर्म नहीं है ये कहना चाहते। सुबह घूमने जाते तो कितने लोग बिस्किट ले लेके कुत्रों को देते, हम वहाँ दूध वाले के पास जाते हैं तो एक भाई आती है, वो कहती ये पैसा आधा लीटर का पिलाओ दूध, हाँ पिलाता हूँ जाओ, नहीं मेरे सामने पिलाओ, तो वो थैली खोल कर वो दूध उसको हाँ डालते सामने, वो कुत्ता पीता है फिर चली जाती है, ये तो शुभ भाव है, वो कोई धर्म विरम नहीं है, यानी कौन दे और कौन ले। हाँ देखो नीचे का पैराग्राफ, एक और सारो राग संसार, सारो राग कहा, जिसको दुनिया सारा अच्छा मानती है वो संसार है, अने एक और भगवान राग रहित, जेमा संसार छेज नहीं, अने संसार मा आत्मा छेज नहीं, क्योंकि आत्मा है वो राग रहित है और संसार है वो राग है, वो ही संसार है, उसमें तो आत्मा है ही नहीं है, उसको अनात्मा कहा ना, अनात्म भाव है वो, आत्मिक भाव नहीं, संसार नी दशा मा आत्म स्वरूप छेज नहीं, अने क्या क्या
एक को सारो राग, सारो राग माने पूरा राग,
बधो
बधा
राग, अच्छा सारो एने समस्त राग, सारो एने समस्त
माने
अच्छा नहीं,
अच्छा
ऐसा बराबर बराबर समस्त राग, हमें सारा संसार कहते वैसा बराबर। देखो संसार नी दशा मा आत्म स्वरूप छेज नहीं, अने आत्म स्वरूप मा संसार छेज नहीं, आत्म स्वरूप ना संसार नहीं है, नहीं आत्म स्वरूप में राग भाव है ही नहीं, आत्म स्वभाव जो है वो राग से रहित है, ये कहना चाहते हैं, ये पर्याय में राग उत्पन्न हुआ है, आत्मा की पर्याय में राग उत्पन्न हुआ है, पर आत्म जो अनादि अनंत स्वभाव भाव है, ध्रुव स्वभाव भाव है, उसमें राग का अंश भी नहीं है, वो आता है ना हमेशा एक समय के पर्याय में उभा कर दिया उसने, क्यों क्यों अपने अज्ञान भाव के कारण, एवा धर्मी स्वहित में लीन रहते थको। शुद्ध जीवासी काय भाषा केवी लीधी जोयू, शुद्ध जीव न लीधो। वितराग सर्वज्ञ देवे असंख्य प्रदेशी जीव जोयो छे, क्या कहना चाहते हैं? शुद्ध जीवासी काय कहने से उसके असंख्यात प्रदेशी जीव ये बताना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये जीव लोक प्रमाण जो असंख्यात प्रदेश है, वो असंख्य प्रदेशी जीव वितराग सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। ए सिवाय सर्वज्ञ सिवाय कोई ये जोयो नथी, क्योंकि अरूपी द्रव्य है, अमूर्तिक है, और वो तो भगवान ही उसको जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, तो उनके तो कितने उसमें प्रदेश है वो भी उन्होंने जान लिया। कोई ठिकाने आ बात नहीं। हा हा, श्वेतांबर में अपन जो असंख्य प्रदेशी छे एमा एनी भूल छे। देखो, क्योंकि आत्मा का कितना साइज यानी पूर्ण विकसित है, पूरा स्प्रेड हो जाए तो 343 गणराज्य हो जाएगा। यहाँ यही कहते के 343 राजू कया एमा एनी भूल छे, पोते कबूल कर्यु छे। आपना 343 राजू ने भूल छे तो पछी जीवना प्रदेशो 343 राजू प्रमाणे छे, तो एमा भूल छे तो आमा पण भूल थई। क्या कहना चाहते है? देखो, लोकाकाश के आकार में उनके और जो है तो उनके जो नीचे का जो है ना, तो वो तो वेत्रासन जैसा राउंड मानते हैं, तो उसके एरिया कैलकुलेट करके वो त्रिलोकसार में स्टार्टिंग में पूरी उसकी एरिया कैलकुलेट करके बताई है, और वो कैसा रॉन्ग है वो भी बताया। बहुत कम आती है उसकी एरिया, 343 गणराजू नहीं आती है, क्योंकि लोकाकाश का आकार कैसे है। तो कहते कि पूर्व पश्चिम खाली जो देखते तो ऊपर एक राजू, फिर पांच राजू, फिर एक राजू, फिर नीचे सात राजू, दक्षिणोत्तर सर्वत्र सात राजू है, यानी नीचे का बेस कैसा होगा? सात राजू बाय सात राजू होगा। और उन्होंने सात राजू बाय सात राजू स्क्वायर नहीं मानते हुए राउंड माना, और बीच में भी श्वेतांबरों में बीच में भी, क्योंकि वेत्रासन जैसा वो मानते हैं या मृदंग जैसा वो मानते हैं, मृदंग का नीचे हाफ ऐसा उनका कथन है, तो बीच में भी गोलाकार मानते हैं, और बीच में भी ऐसा सात राजू है और ऐसा एक राजू है, और वो सारा इस तरह से टेपरिंग है, पर वैसा वो नहीं मानते। नहीं, पर वो होती नहीं, घटित नहीं होता है, घटित नहीं होता उनके कहने से, वो घटित नहीं होता, क्योंकि वो राउंड जो शंकु जिसको कहेंगे उसका उसके घनफल निकालने के जो तरीके है वो निकाल कर उन्होंने बताया। त्रिलोक सार में स्टार्टिंग में पूरी विस्तार से बात है कि वो एरिया उतनी घटित होती ही नहीं है। धौला में भी बताया, चौथे पुस्तक में है शायद, चौथे में है, दूसरे में तो सारा वो 14 मार्गणों का ही हो। त्रिलोकसार में ही बात कर रही मैं, त्रिलोकसार की बात मैंने बताई, चौथे पुस्तक में बहुत विस्तार से है। 343 घन राजू प्रमाण है, क्योंकि लोकाकाश का आकार इतना है, तो लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने जीव के अपने उतने प्रदेश है। जीव का अपना सब्सटेंस जुदा है ना, अपना मटेरियल है ना, जो कुछ उसका जीव के अपने राजू का प्रमाण ही असंख्यात है, असंख्यात योजन होते हैं, और वहाँ प्रदेश गिनने हैं। प्रदेश इतने सूक्ष्म है, अंगुलन इतना सा है, उसके असंख्यात भाग में इतने प्रदेश है, उसको समयों में कन्वर्ट करो तो असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चली जाए। एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी 20 कोड़ा कोड़ी सागर होते हैं, और सागर में समय कितने होंगे, कितना बड़ा असंख्यात होगा, तो अंगुल में कितना बड़ा असंख्यात होगा, तो पूरे लोक में कितना होगा। अंगुल तो एक लीनियर लाइन कहते हैं, अभी अंगुल का घन करो तो जिसको हम घनांगुल कहेंगे, घनांगुल यानी इतना अंगुल, इतना हो जाएगा ना क्यूबिकल, इतने का क्यूब देखो और पूरा लोक कितना बड़ा होगा, फिर भी वो असंख्यात में है, और उसके एरिया कैलकुलेट करना चाहिए तो 343 घन राजू आनी चाहिए। तो 343 घन राजू वो गोलाकार जो नीचे का बेस है या वेत्रासन जैसे पूरे नीचे का अधोलोक वो ऐसा राउंड मानते हैं। आपने वो भेल वाले का कभी देखा था, पहले के जमाने में वो कंधे पर भेल लग के आते थे, उनका वो नीचे रखने का ऐसा होता था ऐसे। हाँ हाँ ऐसा होता है तो गोल ट्रायंगल शेप, पर नीचे गोलाकार में ट्रायंगल आता है, वैसा वो अधोलोक की रचना मानते हैं। और वैसा मानने पर उसकी एरिया वो कैलकुलेट नहीं होती। स्क्वायर है, सेवन राजू बाय स्क्वायर राजू स्क्वायर आखा है, थ्री डायमेंशनल है। देखो साइंस वाले कहाँ मानते हैं, साइंस को लोग का पता ही नहीं है। देखो ये पूर्व पश्चिम, ये जो हमें लोकाकाश का मालूम है एरिया इस तरह से, पर ये थ्री सर्वत्र सात राजू ऐसा है, तो ये नीचे इस तरह से होगा ना, नीचे का ये बेस ऐसा सात राजू भाई सात राजू का होगा, थ्री डायमेंशन है ना, यहाँ से हमको दिखना दिख नहीं रहा है, हमें तो सामने के दो ही एंगल्स दिख रहे हैं, परंतु वो लोग इसको यहाँ गोलाकार मानते हैं और यहाँ भी गोलाकार मानते हैं, और इस तरह से ये एरिया कैलकुलेट करते हैं। वो एरिया कैलकुलेट करके उन्होंने दिखाए है, क्योंकि एरिया कैसे कैलकुलेट करके दिखाए, पहले ये जो राउंड है ना उसके एरिया कैलकुलेट की, फिर उसके बाजू की एरिया कैलकुलेट, पूरा इतना विस्तार किया कि दिमाग आउट हो जावे, पर वो बहुत एक एक उन्होंने पॉइंट बता के, हमने तो यहाँ अलग अलग मॉडल्स भी बनाए थे रबर का, वो या वो क्ले आती है ना चाइना क्ले, उसके भी हमने बना के वो सबको समझाया था किस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन किया है, तो इसका कैलकुलेशन बरोबर सब पूरा का पूरा घन स्वरूप है, उसकी एरिया कैलकुलेट करके बताई थी, वो उतनी नहीं होती है। ये नहीं क्यों नहीं है, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन किए हैं उसके अंदर। और ये कैसे है, तो इस तरह से है, ये बीच में लोकाकाश और नीचे ये सात राजू बाय सात राजू में फैल गया, इस तरह से है। और फिर उसके एरिया कैसे निकालने, उसके तरीके हैं, उसमें ऐसे वेत्रासन जैसे मानते हैं, नीचे ऐसे जैसे ये ऐसे पूरा घन स्वरूप इस तरह से, यानी उनको अधिक पता ना उसमें से आए हैं तो वहां क्या मान्यता चलती है, और उन्होंने कबूल करते कि ये गलत है करके, क्योंकि हटके कुछ रचना की है और अपने ओर से कुछ अलग मान्यता उन्होंने प्रस्तुत की है, परंतु वो घटित नहीं होता, क्योंकि देखो गणित तो गणित का उत्तर तो एक ही आना चाहिए, उसमें तो दो उत्तर नहीं आएंगे, कि 343 घनराजु तो लोकाकाश की एरिया बता चुके हैं, तो उसमें अलग उन्होंने उसकी एरिया कैलकुलेट की हो गए समय, अलग से आकार बताए, वो घटित नहीं हो रहा है, यही रुकेंगे हम, ये नीचे का पैराग्राफ फिर पढ़ेंगे कल। जावानी के ज्ञान से सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।